جس زاویے سے بھی آئے جس ذریعے سے بھی آئے اس پریشانی اور مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے تو اس کا طریقہ جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کرنا نعرے لگانا نہیں ہے نعرہ لگانا ہی ہے تو نعرہ لگاؤ یا اللہ بجلی چلی گئی بجلی بھیج دیجیے یا اللہ گناہ بڑھ گئے ہیں معاف کر دیجیے یا اللہ اندھیرا پڑ گیا ہے نور بھیج دیجیے یہ تو نعرہ چیز ہے لیکن بازے جو یہاں سڑکوں پہ نعرے بازی ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے کوئی پریشانی کوئی آفت کبھی آندھی آ گئی کبھی بادل آ گئے تو صحابہ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اللہ کے مدد مانگتے تھے اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم انسانوں سے مدد مانگتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کر کے اور گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں بتائیے رکاوٹ کھڑی کرنے سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ پھر تکلیف دینا ہمارے دین میں حرام ہے کسی مومن کو تکلیف دینا ہدایت مومن حرام ہے بلکہ کسی انسان کو بھی تکلیف دینا حرام ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان تکلیف دینا حرام ہم کیا کرتے ہیں ہم تکلیف دے کر اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں لہذا مصیبت کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں نا آفتیں بڑھتی جا رہی ہیں نا کیا ہو رہا ہے ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح مدد فرمائے اور ہمیں پورے پورے دین پر صحیح طریقے سے سمجھداری کے ساتھ ہماری دورے کو دین کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پاس جانا ہوتا ہے بہت سے لوگ اس زمانے میں دین سمجھا رہے ہیں لیکن خود نہیں سمجھے ہوئے جو خود نہیں سمجھا وہ دوسرے کو کیا سمجھا ہے خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں لہذا یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اصل کام گناہ چھوڑنا ہے اور گناہ چھوڑنے میں معاملت ذکر اللہ سے ہوتی ہے تاکہ ذکر اللہ سے ہمارا دل نور کا عادی ہو جائے اور گناہوں کا ادراک فورا ہو جائے حدیث پاک میں نے اذا تصرف کہا تھا ان کو واحد سانس کا صحیح رقم فن سب کہ جب اس کو تیری نیکی خوش کر دے اور گناہ تجھے غمگین کر دے تو یہ آرام ہے کہ تو مومن ہے اگر گناہ سے گناہ کی جا رہا ہے لیکن احساسی نہیں بے پردے کی ہے شرعی پردہ کی ہے اور ٹی وی کیبل کے آگے بیٹھ رہی ہیں اور تاش کھیل رہے ہیں ڈپو کھیل رہے ہیں گناہوں میں بیٹھے ہیں گالیاں بلوچ ہو رہی ہے اور نظر بازیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ احساسی نہیں ہے اگر غمگین ہو جائے جہاں نظر خراب ہو رہی ہے آپ کی نافرمانی ہو گئی آنکھوں کا جنا ہو گیا بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نہیں ہے نظر آنکھوں کا جنا ہے نظر بازی نہ میرا عورتوں کو دیکھنا چاہے گھر کے رشتے دار ہوں چاہے بازار میں چلنے والے ہوں چاہے اسپتال کی نرس ہو چاہے ہوائی جہاز کی روشن ہو چاہے چلتے پھرتے خود ہوں جہاں بھی کئی ہوں چاہے یہ موبائلوں کے اندر گندگیاں ہوں آنکھوں کا دینا ہے آنکھوں کا دینا ہے مرد عورت کو دیکھ رہے عورت کو دیکھ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی لعنت اللہ ناظر و منظور الیہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے نا محرموں کو دیکھنا نظر بازی نظر بازی پر لعنت اللہ کی لعنت لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ذکر کیوں کرنا ہے اور اصلی کام کیا ہے اصلی کام ہے گناہ چھوڑنا جس پر اللہ تعالیٰ کی ولایت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لیاہو الا المتقون میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی جو گناہ سے بچتے ہیں گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں وہ میرے دوست آپ گناہ چھوڑتے جائیں چھوڑتے جائیں چھوڑتے جائیں ترقی کرتے جائیں ترقی کرتے جائیں خدا تعالیٰ کے محبوب بنتے جائیں ولایت کا درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ پا جائے اس کی کوئی حد نہیں ولایت کی کوئی حد نہیں کوئی واشاء اللہ کا ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا ولی کامل ہو گیا ہم تو گمان کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ ولی کامل ہے لیکن वही वली अपने बारे में नहीं कह सकता कि मैं वली काबिल हो गया, अब इससे आगे कोई दर्जा नहीं, ये नामाजूर है। जैसे एक सफेदी है, उससे ज्यादा और सफेदी भी है, उससे ज्यादा और सफेदी भी है, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की दोस्ती का रास्ता नामहदूद है। जितनी चाहें आप तरक्की करते जाए, जितनी चाहे अल्लाह की मोहब्बत हासिल करते जाए, रास्ता नामहदूद है। तो गुनाह छोड़ने से अल्लाह की दोस्ती हासिल होगी। और किसमें मदद हम जिक्रुल्लाह से लेते हैं, ताकि जिक्र का गुण जब दिल में आएगा तो छोटा गुनाह भी फौरन खटक पैदा कर देगा और उससे तौबा की तौफीक पैदा होगी, तौबा की तौफीक मिल जाएगी, जिससे हमारा वो गुनाह खुल जाएगा और हम फिर पाक साफ हो जाएंगे। और न सिर्फ ये पाक साफ हो जाएंगे बल्कि अल्लाह ताला के महबूब भी बन जाएंगे, अल्लाह ताला के महबूब भी बन जाते हैं तौबा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को महबूब रखते हैं। अल्लाह का महबूब बनना हमारा मकसद हयात है, इसलिए हम जिक्र करते हैं। तो फरमाया कि विलायत अल्लाह की दोस्ती जिक्र पर मौकूफ नहीं, गुनाह छोड़ने पर मौकूफ। जिक्र इसलिए करना है कि गुनाहों से बचने में हमें मदद मिल जाए। बहुत से लोग ज्यादा जिक्र करके कसरत जिक्र की वजह से तहफुल नहीं हुआ, उनको दिमाग आउट हो गया, दिमाग आउट हो गया, उसकी बाबई लड़ना शुरू कर दिया, बीवी बच्चों से लड़ना शुरू कर दिया, दीन की समझ ना होने की, दीन की समझ नहीं। उन्होंने यही सीखा कि भाई जितना ज्यादा जिक्र करोगे उतना ही अच्छा है, ऐसा नहीं। एक डॉक्टर 5 मिलीग्राम की दवा आपके लिए तजवीज करता है, आपकी सेहत, आपकी उम्र, आपकी ताकत देखकर 5 मिलीग्राम बताता है कि इतनी दवा खा लेना। एक हकीम है, वो तजवीज करता है कि एक चमचा जमीन का रोजाना खा लिया कर, आप 10 चमचे इकट्ठे खा लें, ये भाई जल्दी फायदा हो जाए, क्या होगा भाई। अल्लाह का जिक्र नाफे है, लेकिन तहम्मुल से ज्यादा कर लिया क्या हुआ, कि तबीयत बिगड़ गई, दिमाग खाओ हो गया, गुस्सा बढ़ गया। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह से एक साहिब ने आके अर्ज किया कि हजरत मुझे बैठ कर लीजिए। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह अलहमदुल्ला तबीब जिस्मानी भी थे तो तबीब रूहानी भी थे। तो हजरत ने उनके चेहरा देख के अंदाजा कर लिया कि इनके मिजाज में गुस्सा हुआ है। फरमाया कि आपको गुस्सा आता है, कहती हजरत गुस्सा तो मेरी नाक पर रखा है, और इतना गुस्सा आता है मुझे कि कोई मुझे सलाम करता है तो मैं उसे गाली देता हूं। उन्होंने फरमाया अच्छा गाली देते हैं आप, तो आपके आपको कोई मारता पीटता नहीं है क्या, मैं भाई से गाली देता हूं। हमारे हजरत ने फरमाया अगर तुमने जिक्रुल्लाह का यही हाल रखा तो एक दिन तुम जोर से भी गाली दोगे और फिर तुम पिटोगे। तो फरमाया कि तुम 6 महीने के लिए जिक्र बिल्कुल मुलतवी करो। ये बात लोगों की मुश्किल से समझ में आती है, दिमाग में बैठती नहीं। बाकी लोग मुर्शिद से भी बड़ा अपने आप को समझते हैं, और जब मुर्शिद बना तो रास्ता यह है कि अपने आप को मुर्शिद के आगे खड़ा करो, पेश मुर्शिद जहील हो जाओ, पेश मुर्शिद जहील हो जाओ, मुतबिर पे जहील हो जाओ। जब किसी को अपना शेख बनाओ, राहगर बनाओ, फिर जैसे वो कहे वैसे करो, अपनी अमल को पीछे करो कि भाई हमारा मुर्शिद जो है वो सही कर, हमें ऐसे ही करना। तो पेश मुर्शिद जलील हो जाओ, मुत्तबे बेदलील हो जाओ, और फिर तो सचमुच जमील हो जाओ, यानी आपके सहील हो जाओ। अल्लाह की दोस्ती अगर चाहिए तो अपनी राय को फना करो, अपने हालात की खिलाफ मुर्शिद को करो, और जो तजवीज वो दे उस पर अमल करो। थोड़े दिन में खोपड़ी ठिकाने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम सही रास्ते पर। तो बारह हजार लोगों ने मान ली बात, 6 महीने के लिए जिक्र को तभी कर दिया। 6 महीने के बाद हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, हजरत ने भी चेक किया कि इनका चेहरा एहतिकाल पे आ गया। आकर अर्ज किया कि हजरत मैंने आपका हुक्म माना, अब मेरे बीवी बच्चे आपको दुआएं देते हैं, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे मुझसे तंग थे, वो कहते थे कि हम दो दफ में जी रहे हैं, अब या आपने मेरा मजाज या तदाद कर रहा है। तो मेरे अजीजों, ज्यादा जिक्र से विलायत नहीं मिलती, बल्कि गुनाह छोड़ने पे विलायत मिलती है, और गुनाह छोड़ना बहुत आसान, बहुत आसान है। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक काम करना आसान है या काम न करना आसान है, इतनी आसान सी बात से समझा दिया, काम न करना आसान है। तो फरमाया, क्यों अपने को मुश्किल में डालते हो, क्यों ब्लेड लेके अपने गालों को छेदते हो, रोजाना सुन्नत नबी को गटर लाइन के अंदर डालते हो, क्यों जो है तुम अपने आप को हसीनों से लड़ाते हो, पास नजिल को तड़पाते हो, लसाते हो, जलाते हो, रात भर उसके सफरों में तड़प रहे हैं, क्यों तुम ऐसे गंदे काम करते हो, आराम से रहो। आंखों की हिफाजत में है इस दिल का सुकून भी, बेचैन है दिन रात की बदनामी जमा, जो लोग नजरबाजियां करते हैं उनकी रातें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी सेहत बर्बाद हो जाती है, जवानियां बर्बाद हो जाती हैं, शादी के लायक नहीं रहते और आखिरत की तबाह हो जाती है। तो फरमाते हैं मेरे मुर्शिद के भाई, आराम से क्यों नहीं रहते, अपनी आंखों को बचा के दिल का सुकून ले। फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारी आंखों की हिफाजत करता करवा के बसीरत लेके बसारत लेके बसीरत अता फरमा दी। बसारत ये है कि मत देखो इन हसीनों को, बेपर्दा औरतों को मत देखो, तो हम तुमको बसीरत अता कर देंगे, ईमान की हलावत अता फरमा देंगे, हलावत ईमानी का वादा है अदर की बात। तो गलत ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गुनाहों को छोड़ने से हमारी तरफ नहीं होगी और जिक्र को हम इसमें मददगार जाते हैं। तो एक तस्वीर ला इलाहा इल्लल्लाह की पड़ी जाएगी और इसी तरह एक तस्वीर हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिजाज अल्लाह अल्लाह की बताई जल्ल जलालुहु, और एक तस्वीर इस्तिगफार की और एक तस्वीर जरूर करी। इस्तिगफार भी मुख्तसर वाला, दुरूद शरीफ भी मुख्तसर वाला, 5-7 मिनट में दो तस्वीर कर लो सुबह, 5-7 मिनट दो तस्वीर कर लो शाम, छुट्टी हो गई, थोड़ी सी तिलावत कर लो, थोड़ी सी दुआएं कर लो, बस और कुछ काम नहीं करना है। असल काम जो करना है निगाह की हिफाजत करो। फरमाया कि इस जमाने में जो ये आदमी काम कर लेगा, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे टेढ़ा हो, कहते ना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो बूढ़ा तो हो जाता है, वही जवान रहते हैं बाईचार बुढ़ापे में, बल्कि बुढ़ापे में हमारे हजरत फरमाते थे कि बुढ़ापे में तो ब्रेकें और ढीली हो जाती हैं, जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है, ब्रेक यहाँ लगाओ तो 10 फुट दूर जाके ब्रेक लगता है, ऐसे ही सही आदमी का ब्रेक बड़ी मुश्किल से लगता है, हुआ कमजोर हो जाते हैं और जवानी खैरात बजाय खत्म होने के, इल्ला ये कि कोई बिल्कुल ही शहर से पानी हो जाए, जैसे हमारे मौलाना नहीं था। तो वाइसा जवान रहती है, इसीलिए मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, फरमाया कि धोखा न खाइयो मेरी ईंटें सफेद थे, धोखा न खाइयो मेरी ईंटें सफेद थे, दाढ़ी सफेद हो गई। तो आप ये मत समझना कि अब ये बड़े मियां खत्म हो गए, डर पानी हो गए, धोखा न खाइयो मेरी ईंट माने दाढ़ी, धोखा न खाइयो मेरी ईंटें सफेद थे, है नफ्स ने हाँ ईंटें मुसब्बत लिए हो, नफ्स अंदर जो छुपा हुआ है उसकी दाढ़ी खाली है, जहां मौका मिले जितनी ताकत होगी गुनाह कर लेगा, ये नफ्स ऐसी चीज है, आदमी को अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता कि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई लिहाजा आप मुझसे गुनाह कसरत नहीं होगा, ऐसा नहीं, बल्कि जितनी मुद्रत होगी उतना गुनाह कर डाले करवा देगा, डाले में नफ्स ऐसा डालिम है कि गुनाह करवा देता है। अब किसी को कुदरत है उसने निगाह खराब कर दी, आंखों का जना कर लिया, अल्लाह रसूल के फरमान की नाफरमानी कर दी, पुराने पाक में हुक्म है निगाह की इबादत का, अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमारे मुर्शिदीन ने कोई बात बिला दलील पुराने पाक और हदीस से बाकी की, कभी सुनी नहीं हमने ऐसी बात, खराब होना है खराब होना, कुरान पाक में या कुल मोमिनीन या यगुस्सु मिन अबसारिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिनीन से फरमा दीजिए कि अपनी बात निगाहों की इबादत करें। तो जो आदमी इबादत नहीं करेगा भाई, तो अल्लाह रसूल का नाफरमान होगा कि नहीं, और फरमाया कि जालिका अस्कालहुम अभिलाषाओं की भी हिफाजत करें। मालूम हुआ कि जिसकी निगाह खराब होगी उसकी शर्मगा भी महफूज नहीं रहेगी। हाँ, जो निगाह की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह उसकी शर्मगा भी महफूज है। पहले आंख खराब होती है फिर दिल खराब होता है, जब दिल खराब होता है तो फिर सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए कि दिल असल चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन फिल जसद मुग़दह इज़ा सलहत सलह अल-जसद कुल्लुह व इज़ा फसदत फसद अल-जसद कुल्लुह अला वहिय अल-फ़स्द। फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक लोटरा है, हर्फ तंबीह फरमाई, ये लोटरा है तुम्हारे जिस्म में, अगर उसकी इस्लाह हो जाए पूरे जिस्म की इस्लाह हो जाती है, और अगर उसकी उसमें फसाद पैदा हो गया गुनाहों का तो पूरे जिस्म से गुनाह ही गुनाह सादिर हो जाए, फसाद पैदा हो जाए, वो है फल्क। तो आंख खराब हुई दिल खराब हुआ, दिल खराब हुआ सबसे पैसा बर्बाद, गुनाहों का सबूत, कुछ भी गुनाह हो जाए बड़े से बड़ा सोचा जब नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तह की फस्तह मा शिक्त, कि जब तुमसे हया ही खत्म हो गई तो जो चाहो वो करो। यानी इस आदमी ने हया नहीं, निगाह की हिफाजत नहीं, तो फिर उससे कोई भी बुराई हो जाए तो उसका ताज्जुब नहीं। चोरी डाका शराबखोरी जिना झूठ गीबत चोली झगड़ा फसाद गालत गलौज कोई गुनाह छोड़ेगा नहीं फिर, क्योंकि हया असल किया, हया खत्म हो गई सब कुछ किया, और दिल गया रौनक हयात से, दिल गया रौनक हयात से। तो मेरे अजीज और दोस्तों, ये कल जो है कल इसको बनाना, ये कल अल्लाह के वास्ते है, अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि अना इंदल मुंतसिरति कुलूबुहुम, मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूं। अजीब शान है मालिक की, इतनी अजीब और शानदार, इतने सितारे कायनात दुनिया सूरज जमीन और आसमान बनाने वाले जैसे अल्लाह से आदि में हो, और अपने रहने का की जगह पसंद की तो ये पाओ क्या पाओ। अजीब शान है मेरे मौला की कि उनको क्या चीज पसंद आई अपने रहने के लिए, यही अलामत है कि वो अल्लाह हमारे अल्लाह, क्योंकि वो बेनियाज, क्योंकि अजीब जात का हक तो यह है कि अजीब जगह पर रहे, लेकिन वो हर किस्म की बेनियाज तारीफ से बेनियाज। वो क्या फरमाते हैं कि मुझे तो ये दिल पसंद है, मैं इससे रहूंगा टूटे हुए दिल, वो दिल जो मेरी खातिर टूटा हुआ है, वो दिल जो तेरी खातिर फरियाद कर रहा है, उजड़े हुए दिलों को आवाज कर रहा है। हम तो उस दिल में रहे। मौलाना तकी उस्मानी साहब को भी ये शेर है, फरमाते हैं कि दर्द दिल देख उसने मुझसे ये इरशाद किया, दर्द दिल देख उसने मुझसे ये इरशाद किया, हम उसी दिल में रहेंगे जिसे बर्बाद किया। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का भी शेर है, फरमाते हैं आरजूए दिल को जब जेरो जबर करते हैं वो, आरजूए दिल को जब जेरो जबर करते हैं वो, मल गए दिल में उन्हीं को मैं मां पाता है दिल, दिल का बलबा हो गया, आरजुओं का ढेर बन गया, एक आरजुओं की बिल्डिंग है, एक आरजुए के तमन्नाएं हैं कि हम ये कर लेते वो कर लेते, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा कर लेते, इस हकीम को देख लेते उस हकीम को देख लेते, रंगीन फिल्में देख लेते, गाने सुन लेते, ये गंदी गंदगियां देख लेते, हम भी जरा मजा ले लेते। हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है, और ये अल्लाह ने भी ख्वाहिश होती है सुना, हाँ, और उसको कुदरत भी होती है गुनाह, लेकिन खुदा ताला के शौक से उस कुदरत के इस्तेमाल करने की कुदरत नहीं है, ये फर्क होता है मौलिया अल्लाह ने और हम जैसे गुनाहगार हो, कि वो कुदरत होने के बावजूद खुदा ताला का ऐसा खौफ दिल में रखते हैं कि उस कुदरत को इस्तेमाल करने की ताकत नहीं होती, डरते हैं खुदा ताला ये कहीं महबूब के पास हमसे नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। तो मेरे अजीजों फरमाते हैं कि आरजूए दिल को जब जेरो जबर करते हैं जब दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, हमारी आत्मा जेरो डबल हो गई, मलियामेट हो गई, मलबा बन गया। इसी मलबे में अल्लाह ताला को मेहमान था। अलाइन दनून प्रसिद्ध थी बोलो, मैं टूटे हुए दिलों में रहता। मेरे मुझे दामोदारे फरमाते थे कि जो अल्लाह ताला के लिए अपने दिल को तोड़ता है, अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरा नहीं करता, उस दिल पर उन्हें यूं प्यार आता है। सुन लो मेरे हजरत का शेर, फरमाते हैं मेरे टूटे हुए दिल पर उन्हें यूं प्यार आता है, मेरे टूटे हुए दिल पर उन्हें यूं प्यार आता है कि जैसे चूम ले मां चश्मे नम से अपने बच्चे को। और फरमाते हैं कि अजलबे नादीदा सब गोता रखी, अजलबे नादीदा हमने देखा नहीं अल्लाह ना, अल्लाह के लब हैं, अल्लाह ताला जिस इससे पाक है, हमारे तसव्वुर में नहीं आ सकते अल्लाह ताला। हाँ तफक्करू फी खल्किल्लाह वला तफक्करू फिल्लाह, अल्लाह की मखलूक में तो तफक्कुर तदब्बुर जायज है और करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की जात में तफक्कुर ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला लामहदूद जात है, हमारी अकल में नहीं आता। हाँ जितना पहचानना है अल्लाह की मखलूकात में गौर करके अल्लाह को पहचानो कि वाह अल्लाह तेरी कैसी कुदरत है, एक फिजा के अंदर कोई खंभा नहीं है, जमीन मौला है हवा इतना वजन 24,000 मील का गोला अल्लाह के क्या आपने अपनी कुदरत से इसको थामा हुआ है हला के अंदर, और सूरज है वो कितनी जमीन से कई गुना बड़ा, ये सूरज है कैसा आपने अल्लाह इसको मौलम भी किया हुआ है, और ये एक दायरे में तैर रहा है, चांद जैसे दायरे में तैर रहा है, और खरबों सितारे अल्लाह आपने पैदा किए वो सब फला में, ना उनमें कोई रस्सी बंधी हुई है, ना उनके अंदर फासला रखने के लिए कोई चीज नजर आ रही है, और ना ही उनको थामने के लिए कोई सुतून है। इस तरह अल्लाह को पहचानो कि अल्लाह आप जैसे अजीब शान होंगे कि जिसकी आई है कि मुझान अजीब शान खबर है। तो मेरे अजीज और दोस्तों बात कहां से कहां चली जाती है कि अपनी नाजायज आर्जुओं को जो बर्बाद करता है, तो उसके लिए हजरत ने हमारे शेर फरमाया अजलबे नादीदा सब गोसा रसी मन से गोया करो शेर हजरत चली के न देखने वाले लबों से अल्लाह ने मेरे दिल का जो प्यार ले लिया है, तो मैं नहीं जा बता सकता कि मेरी रूह ने क्या लज्जत मुझे मेरी रूह को मिली है, खुदा ताला का क्या खुद मुझे मिला है। तो हम अपने दिल को तोड़ना सीखें, और दिल कैसे तोड़ा जाता है अपने आप ही हथौड़ा लेके तोड़ना ना शुरू कर दें, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक करें और उसको अपने हालात की इत्तला करें, कोई ऐब हो अपने अंदर, कोई गुनाह की आदत हो उसको बताए कि हमें ये आदत है, फिर वो आपको तदबीर भी बताएगा, थोड़ा सा जिक्र भी बता देगा, और आपके लिए दुआ भी करेगा, रोएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो शेख अपने मुताजिन के लिए रोए नहीं दुआ ना करे वो शेख बनाने के लायक नहीं, जिसको ये दर्द ही ना हो, जिसको दर्द ही ना हो कि मुझसे ताल्लुक रखने वालों को अल्लाह ताला गुनाह छोड़ने की तौफीक दे अल्लाह वाला बना दे, वो शेख बनाने के लायक नहीं, वो आपके लिए रोएगा भी। तो इंशाअल्लाह इस तरह आपको तरक्की नसीब हो। तो बारह चार दस्तियात हमारे शेख रहमतुल्लाह ने इस जमाने के लिए बताई कि चार दस्तियात कर लें इंशाअल्लाह ताला ये हजारों का काम करेगा, और जो तरीका हमारे शेख ने बताया है जिक्र का इंशाअल्लाह ताला ये एक मरतबा पढ़ने का हजारों गुना इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फायदा मिलेगा, बशर्त ये कि जैसा बताया वैसे करें। तो एक तस्वीर कलमे शरीफ की हम पढ़ेंगे ठीक तरह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहेंगे तो ला इलाहा कहते हल्के से दाएं जानेब को हम झुक जाएंगे, और इल्लल्लाह कहते हुए वापस अपनी जगह आ जाएंगे, और तसव्वुर ये करेंगे कि हमारी ला इलाहा अर्शे आज़म तक पहुंच रही है। क्यों तसव्वुर करेंगे, ये महज तसव्वुर नहीं है बल्कि हदीस पाक से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा लहा हिजाबुन दूनल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में और अल्लाह में कोई पर्दा नहीं, तमाम पर्दे हट जाते हैं। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि फर्शी अर्शी हो जाता है, जब बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है फर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्श बिछ रहा है, اللہ سے ملاقات کرتی ہے لا الہ الا اللہ، گویا بندے کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اور تجارت بھی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ دوبارہ راست اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ کلمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتلا دیجیے، خاص ذکر۔ وہاں سے کلمے کی تلقین ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ دعا ہر کوئی خاص دعا پڑھتا ہے، مجھے تو کوئی خاص ذکر بتائیے، میں آپ کا نبی ہوں اور آپ نے مجھے شرف کلام ہم کلامی عطا فرمایا ہے، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمہ ایسی دولت ہے کہ ایک راجو کے ایک پلڑے میں اس کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں تو اپنی قیمت اور اہمیت کے اعتبار سے یہ گلنے والا پلڑا جھک جائے۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کو، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کی قیمت عطا فرماتے ہیں، ہمیں اپنے کلمے کی قیمت کا احساس نہیں کہ ہم کتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ خدا کی قسم اگر سوکھی روٹی بھی نصیب نہ ہو لیکن یہ کلمہ نصیب ہو تو دنیا میں اس سے مالدار کوئی شخص نہیں، اس سے مالدار، اس سے زیادہ مانی دنیا میں کوئی شخص نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی قیمت ادا کرنا ہے۔ تو 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں گے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مکمل کریں گے، اس طرح سے ایک تصدیق پڑھی جائے گی۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کی خدمت میں بار بار حاضری کر، آج یہ کلمہ شریف کی تصدیق ہم نے کر لی ہے، اگلے مجلس میں انشاءاللہ اس اللہ کی تصدیق کر لیں گے۔ اس طرح سے ہم گویا کے اپنے شہر کے دیے ہوئے اسباب کو ہم پورا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے۔ اچھا زیادہ دماغ پر زور نہیں دینا اور نہ جھٹکے مارنا ہے، سر کو حرکت نہیں دینی۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طبیب بھی بنایا تھا، روحانی طبیب تو تھے ہی، جسمانی بھی طبیب تھے۔ ہمارے حضرت کی ڈگری اور حکیم صحیح کی ڈگری ایک ہی، سٹیا کالج سے ہم آ سکتے دونوں اور دو، لیکن ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ طب روحانی بھی ہمارے حضرت کو انتہائی اعلیٰ عطا فرمایا۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ سب سے ضرب دیتے ہیں ان کا وہی حال ہوتا ہے جو میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں، سب کو ضرب نہ دیں، دماغ پر چوٹ لگتی ہے کہ اس زمانے میں اس کا تحمل نہیں، بڑوں کی بات ماننے میں فائدہ ہوتا، ہاں اپنی عمل لانے میں ہمیشہ نقصان ہوتا، اور بڑوں کی بات مان لے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو سر کو ضرب نہ دیں بلکہ ایسے ایسے ہلکے سے جیسے جھومتے ہیں اس طرح سے، اور زیادہ دماغ پر زور نہیں دینا، ہلکا سا دھیان جو میں نے بتایا کہ ہماری لا الہ ہر شاعظم تک پہنچ رہی ہے، اور ان لمبات کیسے ہم اپنی جگہ واپس آ جائیں اور یہ تصور کریں کہ ہر شاعظم سے ایک نور نکل رہا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے، اس تصور سے ہم پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ Oh.
ये पानी, आप माने पानी और गिल माने मिट्टी,
यह मिट्टी और पानी की चीजें हैं ना सारी जो बनी कारें हैं बंगले हैं दौलत है सोना है चांदी सब मिट्टी से बरामद होता है सब चीजें मिट्टी की हैं और जब कयामत आएगी सब चीज इसी तरह बना हो जाए है ना कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवा सब चीज बना हो जाए तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर ये पानी और मिट्टी की चीजें ना बसती हुई हो मिट्टी के खिलौने ना बसे हुए हो मिट्टी के सोने चांदी ना बसे हुए हो बंगले गाड़ियां ना बसे हाथ में हो और मैं कि हाथ में दुनिया रखना चाहिए जेब में दुनिया रखना जायज है दिल में रखना जायज है अल्लाह माल दे हलाल माल दे लो खाओ पियो फायदा उठाओ लेकिन हराम मत खाओ तो ये सब जायज है लेकिन दिल में बसावा रहो दिल में माल की मोहब्बत रहो दुनिया की लालच रहो ये मुराद है और मेरे तन में बजाए आओ किल दर्द दिल हो दर्द दिल हो दर्द दिल दर्द दिल हो दर्द दिल हो दर्द दिल गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर तू ही तू आए नजर देखो जिधर तू ही तू आए नजर देखो जिधर बीवी बच्चों को देखो याद आए मैं आपकी दी हुई बीवी है बच्चों को देखो याद आए आप पहले नजर अल्लाह में है ये मेरे अल्लाह की बीवी है अपनी बीवी को लैला से कम मत समझो अपनी बीवी को लैला समझो लैला मन जोजाए मन लैला मन अपनी बीवी को लैला समझो अगर इधर उधर नजर मारी तो बीवी फिर लैला की नजर आएगी बल्कि चुड़ैल मालूम होगी हाँ ये शैतानी मुस्मरिज्म है नजरबाजी शैतानी मुस्मरिज्म है ये काना हुजूर को जो हराम हुजूर होता है उसको ये काना हुजूर को सोला आना दिखाता है और अपनी हलाल नेमत को ये सोला आने भी होगी तो चाराना भी नहीं दिखाता ये काना भी नहीं दिखाता छोटा सिक्का दिखाता है कि तो ये है उसका ये है वैर दिखाता है हलाल नेमत में और हराम नेमत हराम हुजूर में वो दिखाता है चमकता दमकता दिखाता है इसलिए आपकी बीवी लैला उसे ही लगेगी जो बाजार की कोर में बिरयानी खाता है उसको अपने घर की दाल अच्छी लगेगी हाँ बाजार से बाजारों से बचो बाजारी चीजों से बाजारों से बचो तब अपनी बीवी जो है वो लैला मालूम हो तो रोजे मन पहरे मन लैला है हमारे हजरत का फारसी शहर है मौलाना ये बुढ़े भी पढ़ सकते हैं अपनी गोया के लिए हाँ हमारे हजरत ने अरे भाई क्या बताया आपको ये कुफार क्या जाने मोहब्बत क्या चीज होती है ये कुफार के बड़े लोगों को यही है ना कि बड़े आशिक मिजाज होते हैं बड़े सुमा चाटी करते हैं ये क्या जानते हैं सुमा चाटी जो जो मोहब्बत करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया अपनी बीवियों को ये क्या जाने जाने सुमन इन्होंने उसी से सीखा है हमारे प्यारे नबी से सीखी है ये बात हमारे इस्लाम से सीखी है ये बात हमारे हजरत ने हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत के तरीके भी सिखलाया जो सुन्नत के तरीके जब किसी को जरूर तो हम सिखला देंगे सराई में तो ये सबके सामने थोड़ी सिखाएंगे तो इसलिए मैंने बता दिया कि बुढ़े को भी हमारे हजरत ने गोरिया से मोहब्बत करना सिखाया है उससे कहो कि ए मेरी गोरिया गांव को जरा ठीक से निकालना गोरिया ना समझ ले गई एक कमाजा लगेगा कहो कि ए मेरी गोरिया शक्कर की गोरिया ऐसे उसको लुभाओ ये सब हमारे दीन में हमारे दीन में ये बातें मौलाना पढ़ चुके होंगे अगर ये इन्होंने पढ़ी होंगी हदीस वगैरह ये सब बातें पढ़ी भी ना जो नहीं हम हामी नहीं पढ़ रहे बहरहाल हमारे हजरत ने सिखाया कि यह बुढ़ा भी पढ़ सकता है अपनी गुड़िया के लिए क्योंकि उसके लिए वही ले रहा है कि रोजे मन पहले मन ले रहा है मन के मरा पाता तो बस बोलाए ये मेरी बीवी मेरे लिए ले रहा है क्यों ले रहा है इसलिए कि मेरे मौला की तरफ ये बता रहा था कि और मेरे तन में बजाए आग होगी दर्द दिल हो दर्द दिल हो दर्द दिल और रह से बिल्कुल ही उठ जाए नजर तू ही तू आए नजर देखो ये नहीं कि आप बीवी को देख रहे नहीं है उससे भी पर्दा हो गया इससे एक साहब ने हजरत को खत लिखा कि एक खातून ने कि मेरा मियाँ कहता है कि मुझे इतनी शर्म हया है बस रात को आता है मुझे देखता भी नहीं रात को आता है और चला जाता है बस गुड़बड़ करके चला जाता है हजरत ने फरमाया जानवर है ये जालिम है खुदा ताला इसको पकड़े ये कौन सी हया ये कौन सा दिन है? अरे दीन को सीखो, बुजुर्गों से मिले मिलो, जिंदगी जाया हो जाती है अगर जो है बुजुर्गों से दीन ना सीखे, समझ ही नहीं आती और जिंदगी का लुत्फ नहीं आता। तो ये मतलब है कि बैस से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, ये नहीं है कि बीवी से भी पर्दा है, पर्दा जिससे करना है उससे तो करते नहीं है लाइफ, इधर उधर नजरें मारता है, बीवी से पर्दा करता है, ऐसे लोग हैं चाहे। तो फरमाया कि ये मकसद क्या है कि बीवी को देखो, पहले अल्लाह पे नजर जाएगी, मेरे अल्लाह की दी हुई, और बच्चों को नजर आए, नजर जाए मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह ने बच्चे दिए, माल की नजर जाए मेरे अल्लाह ने ही माल दिया है, जो भी नेमत नजर आए पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह कदीम मुस्लिका, और ये तो तस्वर करो कि मेरे अल्लाह की दी जो नेमत है, पहले अपने अल्लाह, पहला ताल्लुक अपने अल्लाह से, पहला रिश्ता किससे हमारा? अल्लाह से, अल्लाह ही ने तो हमारे माँ बाप को पैदा किया है, अगर माँ बाप पैदा ना होते तो हम कहाँ से आते? हमारे एक दोस्त से निराई बातें करते हैं बहुत, वो बताते हैं कि अगर मुर्दा मुर्गी हरकत ना करते तो अंडे कहाँ से खाते हैं? तो हम कहाँ से होते अगर हमारे वालिदैन को खुदा ताला पैदा ना करते? लिहाजा जिस नेमत को देखो पहले अल्लाह से शुक्र अदा करो, ये हाल हमारा हो जाए कि हम जिस तरफ नजर उठाएं हर जगह दरख्त हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, पौधे हैं, जमीन और आसमान हैं, सितारे हैं, जिन चीजों को हम देखें तो पहली नजर हमारे पहला दिल अल्लाह के बारे की तरफ खींच जाए कि ये मेरे अल्लाह की बनाया। तो ये मतलब है बहस से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिस इधर देखा दरख्त, आ क्या हरा भरा दरख्त है, या अल्लाह तेरी क्या शान है, ये नारियल का दरख्त है, जमीन से 100 फुट ऊपर तूने कोई मोटर के बगैर पानी ऊपर चढ़ा दिया, नारियल के अंदर कहता है शफाफ और बरा स्वच्छ पानी अल्लाह चढ़ा देते हैं, और अंदर जो है सफेद सफेद नरम खोपरा और ऊपर जो है वो ब्राउन काला उसका कितना सब खोल होता है। ये पहली थी हम बचपन में पढ़ा था कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, बताओ क्या है, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो अंदर उसका जो खोपरा है सफेद सफेद और ऊपर उसका काले रंग का खोल है, क्या अल्लाह क्या शान है आपकी, इतना सब खोल आपने उसके ऊपर कैसे बना दिया और फिर उसके अंदर पानी कैसे भर दिया, ये पियो तो बड़ा था, जमीन से कोई मोटर नहीं है, बगैर मोटर के लाने ऊपर क्या है। तो इस तरह की बात, जब कोई चीज देखो तो अपना अल्लाह याद आए, वो अल्लाह तेरी क्या शान है, तो वैसे बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखो। खुशकी वाला मजमून नहीं है कोई दीन, खुश जवाबी है और दीन में चल नहीं सकता, वो यही करेगा फिर लड़ाई बड़ाई करेगा, पिटाई करेगा, बच्चों को मारेगा पीटेगा, ये होगा। तो अच्छे तरीके से मीठे तरीके से दीन में चलो, दीन आसान है, मुश्किल नहीं है।
صلى الله عليه وسلم التغير جديد پانچ باتیں میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد مولانا سے میں گزارش کروں گا اشعار کو ارادہ تو پہلے ہی تھا کہ پہلے ارکان ہو جائے لیکن میں نے کہا کہ کل میں ٹرین پوچھنا سب کے پیاس سے پہلے مجھے یہ سب کی مدد کر چکی پانچ باتیں یہ ہیں کہ اللہ والا بننا تو ہم سب پر فرض ہے یہ بات واضح ہوئی نا ہماری حیات کا مقصد ہماری ستائش کا مقصد اللہ کو راضی کر کے ان کی دوستی حاصل کر تو اس کے لیے پانچ اعمال میرے شیخ احمد اللہ نے فرمایا پانچ اعمال جو کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا فضیل ہو جائے گا اس میں سب سے سرے فہرست کسی اللہ والے کی تہمت اختیار اللہ والے کی تہمت یا اللہ والے کی غلام کی تہمت جب پانی نہیں ملتا تو مٹی کے ڈیم ہو سکتے ہو تو نماز مولانا کامل ہو جاتی ہے کہ جب اس میں کوئی نفس رہتا ہے کوئی نفس اس لیے کوئی اللہ والا نہ ملے تو اللہ والے کا فاضل لیکن اس کو اجازت ہو اپنے شہر سے یہ نہیں تو خود اپنا بابا بن گیا خود خود نہیں سنا دیا دیکھ بھال کے ذرا اپنا شہر بناؤ آپ کے بڑے چور ڈاکو خود میں چوروں میں گاڑیاں رکھی لوگوں کو بہکانے کی کسی اللہ والے کی صحبت باقاعدگی سے اختیار کرو اور اس سے تعلق مضبوط کرو نمبر دو جلدی جلدی بتا رہا کہ گناہوں سے بہت دور رہو گناہوں سے بہت دور دل کا حدود اللہ بلا تقرب ہوا یا گناہ سے بہت دور جاؤ اس کے قریب بھی مت جاؤ یہ اللہ کے حدود اور تیسرا کام اسباب گناہ سے بھی دور رہو برے ماحول سے دور رہو جو لوگ غلط گلوچ کرتے ہیں شراب پیتے ہیں ہیروئن پیتے ہیں سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان سے دور رہو ورنہ ان میں رہو گے ویسے ہی ہو جاؤ ہیروئن کیوں میں رہو گے خدا خاصہ ہیروئن پینا شروع کر دو سگریٹ والوں میں پی رہو بیٹھو گے ایک نہ ایک دن کہے گا اللہ مجھے نہیں کر اس لیے بری صحبت سے بھی دور رہو اور یہ آج کل جو سب سے بڑا خطرناک کتنا اسمارٹ فون کا ہے اس سے بھی دور رہو ہاں اس میں بڑی گندگی ہے ہر آدمی جانتا ہے اس کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہر آدمی جو رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے اس سے گھر برباد ہو رہے ہیں گھروں کو آگ لگ رہی ہے جوانیاں برباد ہو رہی ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں تلاشیں ہو رہی ہیں اسی فون کے اوپر نامحرموں سے دوستیاں ہو رہی ہیں اور اپنی بیوی کو چھوڑ چھوڑ کے چار چار بچوں کے ساتھ چھوڑ کر اس کو دوسری جگہ ماں ٹوبا کے پاس کرنے گئے تلاش سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بری آگ لگ رہی ہے اور نوجوان بچے خصوصاً اور اجڑ عمر کیا ہے یعنی چھوٹے بڑے سبھی اس سے برباد ہو تو یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں کا جس کی شدید ضرورت نہ ہو معاشی وہ اس کو چھوڑ دے صاف صاف بات کہتا اپنے ساتھ عدل و انصاف کرے اپنے اوپر رحم کھائے جس کی مجبوری نہ ہو شدید معاش کی وہ اس کو چھوڑ دے اور جس کی مجبوری ہے وہ بھی اپنے رہبر کی رہنمائی میں اس کو استعمال کرے یہ بھی نہیں کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی کہ ہاں یہ آپ کی مجبوری ہے وہ بھی کھلی چھوٹ نہ سمجھے بلکہ اپنے رہبر کی رہنمائی میں استعمال کرے تو یہ گناہوں کے اسباب سے دور رہتا تین باتیں ہو گئی ایک صحبت اللہ والی صحبت دوسرا گناہ سے بہت دور رہنا اور تیسرا اسباب گناہ سے دور رہنا تین کام چوتھا کام یہ کہ ہر کام سنت کے مطابق ہر عمل سنت کے مطابق یہ نہیں کہ ہاتھ میں باندھے پڑ رہے ہیں کبھی کیوں نیت باندھ رہی نہیں نماز ہو وضو ہو عبادت ہو کھانا پینا ہو سونا ہو جاگنا ہو کسی سے بول چال کرنی ہو ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو ہر کام سنت کے مطابق یہ نہیں کہ بس دعائیں یاد کر لیں یا نمازیں پڑھنی شروع کر دیں یا نمازوں کی کثرت شروع کر دیں ہر کام اعتدال سے ہو سنت کے مطابق ہو ہم سیکھیں کہ نماز میں کس طرح کھڑے ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی کہ تم نماز پڑھو اس طرح جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نقل کر لو گے آپ کی نقل کرنی ہے ہمارے یہاں یہ تین انگلیاں کڑھائی کے اوپر رکھی جاتی ہیں اور یہ انگلی انگلیاں سے اور انگوٹھے سے ہلکا بنایا جاتا ہے اور یہ دائیں ہاتھ کی جو کوئی ہتھیلی ہے بائیں ہاتھ کی کوئی پر رکھی جاتی ہے اس طرح یہ سنت کے مطابق اب آپ ہاتھوں کو ڈھیلا جو ہے جہاں پر آ کے رک جائے یہ سنت طریقہ ہے اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو یہاں بات بند ہے بات کیجیے کوئی بات نماز تو ہو جائے گی جھگڑے کی ضرورت نہیں یہ جب سے یہ کمپا مغرب یہاں آئے ہیں تو یہ انہوں نے یہ فساد کی جڑیں یہاں वो क्या हो गया, फसाद के बीज बो के गए मुसलमानों ने सफा को काटा। अब ये जहां से भी आया हम इसकी बहस नहीं पर, लेकिन भाई घराने की कोई बात नहीं, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सुन्नत तरीका ये, बस हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी तकलीफ करते हैं, हम इस तरह के बांधते हैं, झगड़े की कोई बात नहीं। इसी तरह तकबीर तहरीमा के लिए हाथ कहां तक उठाने चाहिए, किस तरह उठाने चाहिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें किताबें हमारे हजरत की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पर तीन हो चुकी है, फिर ले आएंगे इंशाल्लाह ताला की दफा पर याद रखिएगा कि ये किताबें हम ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके मुताबिक उसको देख देख कर हम सीख लें, ये नहीं कि जैसे चाहे हाथ बांध लिया, जैसे चाहे टेढ़े होके खड़े होके, नहीं भाई, अल्लाह के दरबार में हाजिरी बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी नियमत है। किसी हाफिज के दरबार में बुलावा आ जाए तो हम किस तरह जाते हैं, और अल्लाह अकबर हाकिम के दरबार में हमें कितने ध्यान से खड़ा होना चाहिए, किस दर्जा हमें उनकी तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, किस दर्जा हाजिरी करनी चाहिए, किस तरह हमें इल्हाउदारी के साथ खड़े होना चाहिए, मजाक न बनाना चाहिए नमाज, अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़नी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज। इसी तरह किसी के साथ मामला करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है वो हम किताब में देख लें, किसी से बातचीत करनी है तरीका क्या है वो हम देख लें, बाजार जाना है घर से बाहर निकलना है उसमें देख लें, उसमें लिखा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते तो अपनी निगाहों को नीचे रखें, ये सुनना तरीका है चल रहे। उस तरह से हम हर चीज को देख देख कर अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक उठाने, और बीवियों के साथ आपका मामला कैसे था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं जाना होता रात के वक्त तो आहिस्ता से होते थे, ये नहीं झाड़ झूड़ करना, शोर शराबा करना, तहज्जुद पढ़ना है लेकिन उससे अगर किसी शख्स की नींद में खलल आ जाए आराम से, ये नहीं उठे और जोर से दौड़ा दौड़ मारा और जरा बैतुल खला गया और टपट टपट करके पानी की आवाज आ रही है, वुज़ू कर रहे हैं, एक आदमी सोना चाह रहा है या बीवी सोना चाह रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था कि आहिस्ता से उठते, आहिस्ता से जूते पहनते, आहिस्ता से किवाड़ खोलते, आहिस्ता से किवाड़ बंद करते, जब तशरीफ लाते आहिस्ता से दरवाजा खोलते ताकि घरवालों की नींद न खलल ना आए। अब हम अपना मुआवजा करें कि हमारा मुआवजा अपने घरवालों के साथ कैसा है, ये हमारे प्यारे नबी की तालीमात है कि अपने अजवाज मुतहरात के साथ आपने कितना प्यार भरा और कितना आराम और आसाई वाला मामला करना है, और हम क्या करते हैं अपना तो हम देख लें भाई। तो सुन्नत के मुताबिक हर काम करना, चार काम हो गए, एक लावाली सोबत को पाबंदी से अख्तियार करना, नंबर दो गुनाहों से बहुत दूर रहना, और नंबर तीन असबाब गुनाह से, पूरी सोबत से, एक मोबाइलों से, एक केबल से, जो भी चीज गुनाह का सबब बने उससे दूर रहना, और नंबर चार सुन्नत के मुताबिक हर काम करना, और बच्चों के साथ कैसा मामला था आपका, शफ़क़त का मामला था, एक बच्चे को एक औरत लाई और बच्चा खेलने लगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में बैठ गया और पेशाब कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको कुछ कहा ना उस औरत को कुछ कहा, आप उठे और अपने पोशाक मुबारक को धो लिया, पाक कर लिया, कुछ भी नहीं कहा। हमारा क्या मामला है भाई, जरा किसी बच्चे ने मस्जिद में शोर मचा दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, बच्चे ना समझ लो, अब तो करना ये चाहिए कि बहुत छोटे बच्चे जो ना समझ लो उनको मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाए, ना समझ तो है ही, तो बालिग नहीं हुआ, अगर थोड़ी बहुत शराब खेलकूद कर लेता है तो उसको सबसे नजर करना चाहिए, ये नहीं कि उसको थप्पड़ लगा के अपराध निकाल दिया, क्या होगा वो नमाज से नफरत करने लगेगा, दीन से नफरत करने लगेगा, और इसका गुनाह हम खुद गुनाहगार होते हैं। इसी तरह सब में कोई बच्चा आके खड़ा हो जाए उसको इधर उधर नहीं निकालना चाहिए, उसको आराम से खड़े रहना चाहिए, इतनी जरूर है कि भाई बाप को चाहिए कि वो एहतियात करे कि वो खुद अपने बच्चे को लेके कोने में खड़ा हो जाए ताकि बच्चा दूसरे की नमाज में खलल ना आए, लेकिन अगर आ गया कोई नाबालिग बच्चा तो उसको हटाइए नहीं, मुख्य अभियोग से कभी साहब का रिश्ता है हमारे तीन बड़े गुना उसमें इस गुनाह को जिक्र किया है कि बच्चों को सब में से निकालते हैं, इसलिए बच्चों को सब में से नहीं निकालना चाहिए। हाँ अगर आपको ऐसे ही नमाज का इतना इहतमाम है तो आप खुद पहले आके सब पेंशन से क्यों नहीं खड़े हो जाते, क्यों नहीं आप 10 मिनट पहले आके बैठ जाते, बाकी बच्चा आएगा ही दरमियान, बच्चे तो देर से ही आते हैं खेल कूद करते हुए। तो इसलिए हर काम को सुन्नत के मुताबिक करो, अपने अखलाक को सुन्नत के मुताबिक समाप, असल काम असल चीज तो अखलाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत में एक सहाबी ने अर्ज किया कि हमारे महल में एक औरत है, वो दिन रात नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, नवाफिल पढ़ती है, लेकिन जबान की इतनी कड़वी अगर आती उससे तक अखलाक बहुत खराब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपनी नाक ये दो रंग में जाएगी, बुरे अखलाक दो रंग चले जाते हैं। आप नफले पढ़िए लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाने देखिए। जो आदमी अपनी बीवी बच्चों पर या अपने दोस्तों पर या अपने मतलबी पर जुल्म ज्यादती करता है, बुरे अखलाक में पेश आता है, जहन्नम में जाएगा। कहां गई इसकी इबादत? हम बड़ा नाज करते हैं कि हम बड़े इबादत गुजार हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फैसला है। और साहबी ने अर्ज किया कि एक औरत है जो ज्यादा कसरत से नवाफिल नहीं करती, अल्लाह नहीं करती, लेकिन जो है वो अखलाक की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नाजी से शब्द से पेश आती है। आपने फरमाया कि फिर जन्नत जन्नत में जाए। अखलाक की इतनी बड़ी अहमियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवाफिल नमाजों के अंदर अखलाक को बहुत मांगा है। बहुत दुआएं लिखती हैं हदीस पर, हदीस मुबारक में, कि आपने अच्छे अखलाक को अल्लाह ताला से किस किस तरह से मांगा है। हम अपने अखलाक को खुसूसन सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है वैसे हम करें। घर में हम दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे, हुजूर का बताओ हम कैसे दाखिल होते हैं, जरा हम अपने आप बात करें। हम जल्लाद बजे में दाखिल होते हैं, आंखें लाल लाल होती हैं, खाना वक्त क्यों नहीं दिया, फला काम क्यों नहीं किया, फला काम क्यों नहीं किया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं तो मुस्कुराते दाखिल होते हैं और सलाम फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तरीका होना चाहिए अच्छे अखलाक का, हम खुसूसन हर काम सुन्नत के मुताबिक, लेकिन अच्छे अखलाक सबसे सरे सहरे होने चाहिए। उसमें से हमें अखलाक सीखने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक कैसे। और फिर पांचवा काम क्या है कि जो जिक्रुल्लाह बताया जाए उसको पाबंदी से करो, जो जिक्र बताया है उसको पाबंदी से करो। ये पांच काम हो गए। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी पांच काम करेगा इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह का वली हो जाएगा। मौलाना कुछ अच्छा बता दीजिए जल्दी। वही आप वही स्थिति में है, टाइम कम है, बहुत देर हो गई, लोगों को नींद आ रही है। अब आप अचार पढ़ेंगे तो देखता हूँ लोग सोए सो रहे हैं, जाग रहे हैं। बाद लोगों को अचार में लोरी का मजा आता है, लोरी वो सोने लगते हैं।
उसमें मैंने सुनाया था रंग लाएंगी तो मेरी आहें, रंग लाएंगी तब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब हो जाए, रंग लाएंगी तब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब जब नजर आए वो तब से गुंबद, जब नजर आए वो सब से गुंबद, कहे के सल्ले आला झूम जाए, जब नजर आए वो सब से गुंबद, कहे के सल्ले आला झूम जाए।
आज शरीफ सुन्नत की इबादत है, खाना की इबादत है, सुन्नत की इबादत है।
जब हुजूरी का आलम
Right. طور پر
پر جو غریب ہو وہ گناہ چھوڑ کر, کیونکہ گناہ چھوڑنا بالکل آسان کام نہیں کرنا, تو یہ ضعیف سے ضعیف آدمی اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی دوستی لے سکتا ہے, جس کے پاس نہ مال ہے نہ صحت ہے نہ جسم ہے, اس قابل کہ وہ نوافل پڑھ سکے, کثرت ذکر کر سکے یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکے, لیکن گناہوں کو چھوڑ کر آج بھی وہ ولایت جمعیت کی انتہا کو پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حکمتیں اللہ نے دی ہیں گناہ چھوڑنے کی, خود کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے, اور اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور کامل روزی عطا فرمائے, اور اللہ جو بھائی پریشان ہیں کسی قسم کی پریشانی ہو, اور اللہ جو بچے جن کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے کرم سے ان کے رشتے محبت والے عطا فرما دے, نیک کا رشتے عطا فرما دے, بچے ہوں یا بچیاں ہوں, اور اللہ جو مولک کی ماری میں مبتلا ہے اللہ پاک ان کو پھر کامیاب صبر عطا فرما دے, اور اللہ جو محفوظ ہیں نکل کے اللہ کو ہمیشہ محفوظ فرما, اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے, اور اے اللہ سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اے اللہ ہمیں صحبت اہل اللہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ سنت پر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما, ہم سے قدم نبی کے لیے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, اے اللہ اس سنت ہی کا راستہ واحد ہے جس سے ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اچھے سے بہترین اخلاق عطا فرما دے اللہ, بہترین اخلاق کی توفیق نصیب فرما, اور اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا محبوب اور مقبول بنا لے, اپنا پیارا بنا لے, اور اللہ ہمیں طریقے اکالی پر جینا اور طریقے اکالی پر مرنا نصیب فرما دے, اے اللہ ہمارے گاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما, اللهم إنا نسألك اليمن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان الحنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأنزل المقدس الصبر عندك, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم يا رب العالمين يا رب العالمين بتا دیں بعد میں اگلے دن آپ کے لیے پوچھ رہا تھا کہ دوبارہ بلاؤ گے تو چلے نہ بلائیں گے, آپ کی اجازت ہے نکاح تھوڑی ہو رہا ہے بیان کی بات ہو رہی ہے, یہ سمجھے کہ دوسرا نکاح نہ کرانے کا وہ بھی اثر ہے, اچھا گٹے گٹے بہت ہنستے ہیں اس بات سے دوسرے نکاح پہ, کیونکہ ابھی جو ابھی نئے نئے مزے ہوئے ہیں ان کو بھی مزے لے رہے ہیں ابھی تو اگلے بیان کے لیے آپ کی اجازت ہے, سب سے بھائی آپ جانتے ہیں دوبارہ آپ یہاں آئے تو پھر کیسے پتا چلے گا آپ یہ لوگوں کو کیسے آپ بتائیں گے سب کو, اچھا ٹھیک ہے مشورہ کر کے پھر سارے تعین کر دیں گے, پھر فی الحال ان شاء اللہ اتوار کا ہی ہے کوئی سا اخبار کرے اگلے مہینے میں رکھیں گے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے السلام علیکم, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے ان شاء اللہ تعالیٰ بلانے کا ارادہ ہے اس کا, بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جیسے یہاں یہ فرید اسلم صاحب ہیں ان کے گھر سے ہمارا آنا ہر جمعے کو برس تھا برس سے کئی برس ہو گئے چھ سات سال ہو گئے, 2015 سے میں آتا ہوں اس کے مکان سے, اور وہاں خواتین کا پردے سے انتظام ہوتا ہے, آج کوئی انتظام ہے تو مسیح کے وہاں سے ملتے, اچھا خیر اس کے گھر پر پردے سے آج کا انتظام ہوگا عورتوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا ان شاء اللہ, اگر ابھی ابھی بھی کیا ہے انتظام, یہ معلوم نہیں کہ وہ آئے ہیں خواتین یا نہیں, تو اپنے قواعد کو وہاں پہنچا دیں. اس سب سے پہلے ان کا گھر کیا نمبر ہے؟ پارک کے سامنے, جو سامنے پارک ہے اس کے سامنے ان کا گھر ہے, گلی نمبر 26 میں. پہلا مکان چھوڑ کے دو مکان چھوڑ کے تیسرا مکان چودہ نمبر مکان ہے. تو وہاں پر خواتین کو اتوار والا دن فی الحال, تو جمعے کے دن ہمارا اس کے گھر میں بیان ہوتا ہے ہر جمعے کو. تو دو گیٹ ہیں, ایک گیٹ سے بچ جاتے ہیں دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے وہ خواتین چلی جاتی ہیں پردے سے. وہاں بیان کا انتظام ہے یہاں ہر جمعے کو. لیکن اب یہ جو ایک نیا پروگرام شروع ہو گیا ہے اتوار کا, تو ان شاء اللہ اگلے مہینے میں کوئی تاریخ معین کر کے ہم اتوار کو یہاں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں, اور خواتین کو وہاں کے گھر پہ پہنچا سکتے ہیں وہاں بیان کر کے. پھر ان شاء اللہ آگے جو بھی تکلیف رہے گی وہ بتا سکیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکریہ
ہے
فرید بھائی.